think he has blood gas. He's today, in the bed.
Hospital.
Hospital and important. So important. This day, Ram started for Lanka. This fact is not true that Ram killed Ram this day. Aaj Ramchandra ji ne Ravan ko mara. Ye baat nahi. Vijaya Dashami, Dashami ke din unhone विजय के लिए प्रस्थान किया।
मार्ते क्यों हैं तो यहाँ पर कोई तो होगा मार्ते। वही तो हमारे बता रहे हैं विजय तो क्यों होगा। टुडे वी सी इन इंडिया दैट वेरी बिग स्टीक ऑफ रावण कुंभकर्ण आर मेड अबाउट 40 फीट, मोर देन 40 फुट
long, so bread and very serious type of ornament is made with 10 heads. 10 किलो वाला वो बनता है और उसको रामचंद्र जी मारते हैं, यह दिखलाया जाता है. इसी दिन एवरीवेयर इन इंडिया इन विलेजेस ऑल्सो टाउन्स ऑल्सो एस्पेशली इन मथुरा and in Kashi and in Ayodhya, you see that Ram is killing Ram. Very big shape of Ram is made and Ram has his bow and arrow and his sword, and at once a big fire takes place there, and so thus Ram is killed. इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस दिन रावण का वध किया है. किंतु बात ऐसी नहीं, आज से 8-10 दिन पहले लंका को जलाकर और सीता जी का संवाद लेकर के हनुमान जी लौटते हैं और वहां पर किष्किंधा में एक बड़े फलवान बाग में उपस्थित होकर के अंदर के सही सब बंदर लोग उसके फलों को तोड़ करके खाते हैं और मधु पान करते हैं, बड़ा उत्पाद करते हैं और समय सुग्रीव का मंत्री जो उसका रक्षक था वो उनको मारने के लिए जाता, निषेध करता है, वो मानते नहीं है और उसको भी मार करके वहां से भगा दिया. शायद वो सुग्रीव का ससुर या कौन था, उसको मार करके भगा दिया. तो सुग्रीव के यहाँ जब फिर नालिश गई, जब बंदर हनुमान न जाने कहाँ से आया है और अंगद भी युवराज भी साथ में है और सभी बंदरों की टोली उत्पात मचा रही है और वहाँ का सबसे सुंदर बगीचा उसको नष्ट कर रहे हैं, उसके फलों को काट ले रहे हैं, डालियों को तोड़ रहे हैं और केले के बगीचे को सब नष्ट कर दिया और हमको भी मारा युवराज ने और हनुमान ने सब हमको मारा. वहां पर थी तारा जी. तारा ने सुग्रीव को समझाया, देखो ये स्पेशल कोई बात है, आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करके बगीचे को नष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए आज कुछ अनहोनी घटी है, सीता जी का पता लग गया है और इसी खुशी में वो लोग तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं और मधुपान करके आनंद कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ चिंता करके उनके ऊपर में कोई शासन आदेश ये मत लगाएंगे, आदेश मत कीजिए, आप खुद जाइए और उनसे पूछिए. उनके सलाह से वहां पर सुग्रीव गए और सभी लोग बड़े प्रेम से उनसे मिले, बतलाए कि हनुमान जी वहां से सीता जी को पता लगा करके ये लंका में है, अशोक वाटिका में स्थिर है और ये रामचंद्र जी को संदेश देना है, वहां से ये अंगूठी भी सीता जी का ले आए. तब बड़े खुशी हुए और उन्होंने कहा तुम और जो इच्छा है यहाँ पर खाओ पियो, कोई भी आदेश नहीं रहेगा तुम. तब रामचंद्र जी के पास में गए, उनके चरणों में हनुमान जी लोटपोट हो गए और सीता जी की अंगूठी थी। सीता जी देख कर रामचंद्र जी देख करके निहाल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, देखो ये पहचानता है?
मैं तो नहीं पहचानता।
क्यों नहीं पहचान? मैं उनके पैर की अंगूठी को पहचान सकता हूँ, उनके पैरों के आभूषण को पहचान सकता हूँ, मैंने उनका मुख आज तक नहीं देखा, उनके तरफ में नजर में नजर नहीं मिलाया। सेवक की भांति हमने उनकी सेवा की है, बहुत दूर से रहा, उनको माता के समान में, माता नहीं माता ही जैसा सब लोग देख करके लक्ष्मण जी का आदर्श सभी लोग आश्चर्यचकित हो। रामचंद्र ये स्वदेश चुड़क चल पाते
तो महाराज जी एक्सप्लेनिंग टुडे इज वेरी ऑफिशियल डे इन जनरल होल इंडिया सेलिब्रेटेड that Ravan was killed by Lord Ram, in general. But it is not fact. Maharaj is giving the reason. But right now Maharaj is telling what was the fact. Today is Vijay Dashmi. So Maharaj said that today is the day when Ram started to
Lanka from Kishkindha.
Started for Lanka today from Kishkindha to kill Ravan. To defeat him. So this is called Vijay Dashmi, the day when Ram decided in his mind to defeat Ravan, and he started from Kishkindha to Lanka. In fact, a few days before, at about 8 or 10 days before, after finding where Sita is there in Lanka, Hanuman ji came back. And when he came back with his friends, he was celebrating that I have found Sita ji in Lanka. They were enjoying like anything. There was a very special garden of Sugreev where it was prohibited to go and eat anything, but Hanuman with his friends, he was eating and enjoying the whole
garden.
At that time, Sugreev's father-in-law, who was put a guardian over there to look after that garden, he came and he stopped. But they did not stop, rather they beat him, and he was very much unpleased. He went and complained it to Sugreev. When Sugreev was listening the complaint and he was becoming angry, at that time Sugreev's wife Dara, she was very much mature and intellectual lady. She said to Sugreev, don't get angry, don't chastise Hanuman at all. It appears today is a special day. This is a special celebration which Hanuman is doing after violating your rule, because otherwise in normal way he is not going to violate at all. So you should go there and sincerely ask what is the thing. Because I guess that Hanuman might have found where Sita ji is. So when Sugreev went, Hanuman met him with great happiness and joy and declared that I have found Sita ji in Lanka and in Ashok Vatika. And Sugreev was very happy. He was so happy, he said, there is no bar to you at all to go to this garden and you enjoy as much as possible. So, when Sugreev came back, he and Hanuman came back, he told to Ram that we have found. At that time, Hanuman gave that ring also to Ram that, see, Mother Sita's ring. At that time, Ram was so much moved, he tried, he saw that it is Sita ji's ring, then he gave it to Lakshman. Lakshman, please tell me, really, it is Sita's ring? At that time, Lakshman said, I can't recognize it, because I have never seen her hand and face. My eyes were always fixed at her feet. I can tell ring of feet, finger, but I cannot recognize the ring of Sita ji's hand.
रामचंद्र जी ने पूछा, तुम तो इतने बड़े वीर हो, सीता जी को इस पार में क्यों नहीं गए? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने उनसे प्रस्ताव तो किया, या आप हमारे पीठ पर चढ़ जाए और मैं लंका से सब राक्षसों को मार करके ले चलूंगा आपको। तो उन्होंने कहा, ऐसे में नहीं जाती, मैं पर पुरुष का चाहे कोई भी हो उसका स्पर्श नहीं कर सकती। जबरदस्ती रावण ने हमें पकड़ करके ले गया वो दूसरी बात है, किंतु अपनी जब मुझे स्वतंत्रता है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। यद्यपि तुम उनके सेवक हो, हमारे भी सेवक हो, तुम हमारे बेटे भी हो, तो बड़ा बेटा भी हो जाने पर उसको स्पर्श करना नहीं अच्छा, उसके साथ में एकांत रूप में रहना अच्छा नहीं है। इसलिए सीता जी ने कहा कि बेटा तुम जाओ, राम को खबर दो और राम आए और इनको शासन करके तब जब जीत करके मुझे ले जाएंगे तभी मैं चलूँ, इसलिए वो नहीं आया, नहीं तो वो हमारे मैं तुमको ले आता। इस तरह से रामचंद्र जी 5-7 दिनों के बाद में सारी बंदरों की और रिछों की सभाएं सेनाएं स्थिर थी और एक श्यामल वृक्ष के नीचे रहते थे। श्यामल वृक्ष श्यामली वृक्ष, वहीं से उन्होंने आज के दिन लाखों लाखों बंदरों को, नलिन को, सुग्रीव को, जामवंत को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेनापतियों को लेकर के आज वहां से प्रस्थान किया और 2-1 दिन के बाद ही में समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां पर समुद्र को बाण से मार करके धमका करके पुल बना करके फिर पीछे से पार करके लंका गए। उसके 90 दिन के बाद में उन्होंने रावण को मारा, रावण को उन्होंने 90 दिन के बाद 90 दिन का युद्ध हुआ, इसलिए अभी यहाँ से इस दिन प्रस्थान किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में और सब में इस प्रकार से आज के दिन राम के युद्ध के लिए विजय करने का दिन बताया गया। बड़े बड़े राजा लोग इंडिया में भारतवर्ष में आज के दिन अस्त्र शस्त्र को धार देते हैं, हमारे राजमिस्त्री इत्यादि सब धार देते हैं, बाणों पर शान चढ़ाते हैं, धनुष बाण को ठीक करते हैं। हमारे यहाँ की सेनाएं पहले अपने तलवार और अपने अस्त्र शस्त्रों को ठीक से ले करके और विजय के लिए वन में कहीं यात्रा करती थी आर्टिफिशियल युद्ध के लिए, अभी भी वो सब चीजें उसी तरह से चलती हैं। इसलिए आज रामचंद्र जी ने लंका युद्ध के लिए विजय किया था, इसलिए इसको विजयादशमी कहते हैं। बोल दीजिए
महाराज, इज हियर ब्रिंगिंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हनुमान टोल्ड टू रामचंद्र जी, आई फाउंड हर, आई आस्क्ड हर दैट आई कैन टेक यू बैक टू राम, यू जस्ट सिट ऑन माय शोल्डर एंड आई कैन टेक यू बैक टू राम।
प्रसन्न होती है राम के लिए
ऐसा, बट सीता जी सेड नो, आई कैन नॉट कम विद यू, I cannot touch any other male person. Ravan has brought me here forcefully. That was my compulsion. But as my as rule, I will never touch any male person. Of course, you are very loyal servant of Ram. You are like my son. In scripture, it is said that when son become young, his mother should not touch her in loneliness. So you tell to Ram that he should come and take me back. I cannot touch you. So Hanuman came back and he told to this thing to Ramchandra ji. On today's day, beneath a very big tree, whole soldiers of Ram consisted of millions of monkeys and deer. They started for the journey, a march, victory march. Today they started victory march. So whole India, this statement is according to Valmiki Ramayana. Whole India celebrated as Vijay Dashami. Maharaja is saying that earlier it was the convention that all kings used to sharpen their
this day Ram also did the same, his whole soldiers did the same, and army, Indian army, they used to sharpen their weapons and used to artificially go to jungle for some victory, that is called Vijayadashmi. So after 90 days from today, Ram killed Ravan.
Ram went to Lanka.
And when fight started, it took 90 days. Fight between Ram and Ravan took 90 days. After 90 days, Ravan was killed. So this is now convention that Ravan was killed today.
आज के दिन जो कोई भी शुभ काम कार्य होगा, जो कई दिन नहीं मिलता है, आज के दिन में करने से उसका शुभ फल होता है। कोई भी कार्य किसी काम के लिए मुहूर्त सुबह नहीं निकल रही, गृह प्रवेश के लिए, यज्ञ के लिए और सब कामों के लिए, बस उसी दिन में आज आरंभ से उसका शुभ होगा, जरूर उसको सफलता उसमें। तीन ऐसे डेट हैं, अक्षय तीज, अक्षय तृतीया, विजयादशमी और बसंत पंचमी। ये तीन इंडिया में सेक्रेट डेट है। कोई भी इन तीनों दिनों में कोई भी काम अपना सुधार नहीं और उसका अच्छा होगा। रामचंद्र जी ने रावण पर विजय की क्या तात्पर्य है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। रावण बहुत विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा भारी वेदों का आचार्य था, शंकर जी का उपासक था, उसके 10 शिव थे, कोई मारने से कटता नहीं था, जब काट दिया फिर नया शिव निकल आया, ऐसा बलवान था, जैसा रूप चाहे तैसा कर लेता था, कभी सन्यासी का रूप धारण कर दिया, अलक्ष में ऐसे ही उड़ सकता था, सारी सिद्धियां उसको प्राप्त थी और जो कुछ चाहता वही कर लेता, केवल भगवत भक्ति नहीं थी, शंकर भक्ति थी और दूसरी दुर्गा इत्यादि का उपासक था। विशेष करके उसका एक विचार ये था, भगवान शून्य है, निर्विशेष शून्य है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, शक्ति तो हम लोगों में भी भोग करने के लिए, भगवान शून्य है, इसलिए वो भक्तों का एक आचार्य माना जाता था। उस समय
विष्णु से दुश्मनी रखता था रावण, वो
इसीलिए तो दुश्मन, ये विष्णु नहीं है, इसको मार के रहेंगे, क्योंकि उसका तो रूप है नहीं, वो तो शुरू जीरो है, ये अपने को झूठ क्यों कर रहा है विष्णु, राम उसको क्यों अपने को विष्णु कहता है, यदि कोई शक्ति है तो हम ले आएंगे, हम उसका उपभोग करेंगे, वो तो जीरो है, शून्य है, साइकर है, ये जगत शून्य से आया है, अभी भी शून्य है और शून्य में भी जाएगा, जगत शून्य है, ये जीव भी शून्य है, ब्रह्म भी शून्य है, क्यों इसी को कहते हैं बौद्ध फिलॉसफी। शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मवाद के बल पर इसका खंडन किया, किंतु इन्होंने दूसरे रूप में उसी बौद्धवाद को ग्रहण किया।
ये शंकराचार्य फॉलोअर नहीं, बौद्ध फॉलोअर थे एक किस्म के, रावण
रावण इसका सत्य त्रेता युग का आचार्य था, शून्यवाद का। बीच में व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, नारद जी ने उसको समाप्त कर दिया था। इसके बाद में फिर अब कलि काल में जब वो पढ़ा तो शंकराचार्य जी ने उसको यहाँ से फगाया कि तो दूसरे रूप में उन्होंने उस बौद्ध बात को शून्यवाद को ग्रहण कर दिया और इसके बाद में कुमारी भट्ट इत्यादि ने इस मत को यहाँ से खंडन करके फगाया और उसके बाद में हमारे वैष्णव लोग रामानु मध्व विष्णु स्वामी निर्वाद इन लोगों ने भारत वर्ष में सर्वत्र प्रचार करके इस बौद्ध बात को सदा के लिए दूर कर दिया। किंतु आजकल फिर से बौद्ध अपना सिर उठाने लग गया है और ऐसा समय आएगा कि इसमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कल्कि अवतार नहीं है किंतु और असम में कल्कि अवतरित होकर के इनको जगत से ध्वंस करते हैं। इस बौद्ध बात रावण अपने 10 मुखों से शून्यवाद की प्रचार किया करता था, रामचंद्र जी ने उसे मार करके अपनी शक्ति को लौटा करके दिखलाया कि नहीं मैं शक्तिमान हूं रूपवान हूं हमारे अंदर में समस्त प्रकार के गुण हैं। इसकी स्थापना चलिए बोलिए
Maharaj is raising here very sedantic and tantric point. What does it mean that Ravana was killed by Ram? Before telling this thing, he explained one thing more, that today's day is very auspicious to do any activity. Those who want to conduct their any worldly things or any other thing, and they are looking for any auspicious date, so today's date is universally auspicious for any activity. You don't need to wait for and you can do anything today. Maharaj is saying there are such 3 dates in Indian Vedic culture. One is today, that is Vidyadashmi, one is Akshaya Teej, and one is Vasant Panchami. These 3 days are universally auspicious days, and if anyone wants for to perform any yajna, any griha pravesh or any good activity, he can do this thing. Maharaj is explaining the inner meaning of killing Ram, Ravan by Ram, is that Ravan was biggest shunyavadi of his age. Shunyavadi means
whitest.
Who believes that God does not exist? He is just a big zero cipher. And he does not have any potency. So Ravan used to claim that any potency, if available, I will get it and enjoy the world. So potency does not belong to God, potency belongs to me only. He had 10 heads. He was very much powerful. Maharaj was explaining all Riddhi and Siddhi. He took any form. He can fly. He can kill anyone. And he was so much powerful that everyone was scared of him. He could do anything but except one thing, that is Bhagavad Bhakti. He never did Bhagavad Bhakti, though he did Bhakti of Shankar and Goddess Durga. The purpose of this Bhakti was to acquire power and enjoy, that's all. His concept was that God does not exist, it is a shunya. So Maharaj was explaining that he was of Treta Yuga, biggest shunya acharya. This is the philosophy of Buddha. So he was the leading acharya of Buddhism during Treta Yuga. At that time, Ram killed Ravan, took his potency Sita back and told and established to this world that it is wrong conception that God does not have form. He is widest and he does not have any potency. And he showed that Ram as Vishnu, as Ram,
which he called Advaitwad, but somehow he tried to repel it. And later on, Kumar Bhatt and then all our Vaishnava Acharya established Vaishnavism, and they totally defeated Vaidism of that is Bodhism and Shankaracharya's Advaitwad. Maharaj is saying, even nowadays, again it is this, that Bodhism always seems to be cropping up gradually and gradually. We are finding many people are supporting Bodhism.
Even government.
And government, we are finding that government is supporting more Bodhism. Bodhism people have become ideal of scholarly people, so-called scholarly people and educated people nowadays. So, as per rule, if such Bodhism will increase, they will be killed by Kalki Avatar in Kali Yuga. So Maharaj is saying that this yoga is fortunate age, and in this age Kalki will not incarnate because God has already incarnated in the form of Harina.
In all ages, समस्त युगों में असुर लोग ही मायावादी और बौद्धवादी होते हैं समस्त युगों में. इसलिए जितने बड़े बड़े असुर हैं वो अद्वैतवादी केवल अद्वैतवादी मायावादी या बौद्धवादी. प्रारंभ से हमारे गुरु जी ने उस पुस्तक में महादेव की जीवनी में इसको प्रूव किया है कि जितने भी शून्यवादी हैं या केवल अद्वैतवादी है मायावादी है मोक्ष को मानने वाले हैं ये सब बड़े भारी असुर हैं. और भगवान ने असुरों का विध्वंस किया. इसलिए इस जगत में जितने बड़े बड़े पंडित हैं जो अद्वैतवाद को या बौद्धवाद को ग्रहण करते हैं वो सब असुर हैं. उनको तनिक भी बुद्धि नहीं है नहीं तो भक्ति वो जरूर ग्रहण करते. इसलिए रामचंद्र जी ने रावण अथवा बौद्धवादी या मायावादी को मारा. दस उसके शीर मैंने क्या दशानन
दस दिशाओं में विजय कर
काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य और जितने प्रकार के दुर्गुण है उनका वो रूप है.
ईर्ष्या देश
घृणा ईर्ष्या देश कला कामी धूर्त छली जितने जगत थे वो सब उनमें पड़े भरे पड़े. भगवान राम ने उसको वही फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंत बक्कर होकर के आए वो ठीक वैसे ही और कृष्ण ने उनको संहार किया. इस तरह से जय विजय अपना यह पाठ रोल कर रहे थे. ये शून्यवाद और केवलाद द्वैतवाद मायावाद को दिखलाने के लिए और कैसा उसका ध्वंस हुआ. इसे सब युगों में ऐसा हम देखते हैं कि भगवान या भगवान के अवतारों ने या भगवत भक्तों ने मायावाद का ध्वंस करके भक्तिवाद की प्रतिष्ठा की. रामचंद्र जी का विजय इसी का दूरदर्शन.
Very interesting, and we have a bold heart and mind to say this thing which Maharaj is saying. Maharaj is saying that in all the ages, or we may say that from the starting, from the time immemorial, the fact is this, only Asur. Asur means demon. Demons always profess the policy of Advaitwad and Shunivad. That is monoism and voidism. This is always professed by demons. And Maharaj is saying, our Guru Maharaj used to say that if we look into our back history, we will find there was no any time when they did not do like this. So nowadays, whoever look like a very advanced pandit, but professing monoism and Advaitwad, or he is a biggest Buddhist. Frankly speaking, he is not a pandit, he is a guru. And such declaration is required really very bold mind. So, we cannot call them pandit. This was, Maharaj said, our guru
હતો.
Ram has 10 heads. What does it mean by 10 heads? All those bad things like lust, anger, greed, Isha. Isha means jealousy. All are these heads. And he was having all of them on his body. So he was having these heads, 10 heads on his body. And what Ram did? Ram cut off all these heads. So it is tradition that every time Lord himself or his incarnation or his devotees, whenever they come, they kill, they destroy and defeat such type of demons who always profess monastic advaita and vaidism, that is Bodhi. The same Ravan in Dwapar came as Shishupal and Kumbharan as Dantavakra, and now Krishna killed him. He was also Advaitwadi and Vaidhi during that time of Dwapar. So it is seen that every time Lord, either himself or through his incarnation or through his devotee, kills demons. That is, always he destroys Advaitwad, Vaidhism and establishes love of God.
एक बात और है, इन दिनों में नवदुर्गा का पूजन होता है इंडिया में, किंतु ये अत्यंत अर्वाचीन और आधुनिक चीज है। आज से 2800 वर्ष पहले कहीं भी दुर्गा जी की पूजा आजकल नहीं होती थी। बंगाल में एक वैसे ही डेमन का जन्म हुआ, उनका नाम था
काशीराम दास।
नहीं नहीं, कृतिवास,
कृतिवास
ओझा,
कृतिवास ओझा, कृतिवास ओझा वाज द बिगेस्ट जनरल एट दैट टाइम।
झाड़फूंक वाले तांत्रिक,
और वो तांत्रिक था, दुर्गा जी की उपासना करता था। उसने देखा कि मायावाद अद्वैतवाद प्रचार करने का तो बहुत सहज तरीका है। वो क्या है तरीका? यदि हम किसी जगह लिख दें कोई पुस्तक राम की, और राम के द्वारा लक्ष्मी की, दुर्गा जी की पूजा करा दें, तो सब लोग भारतवासी हिंदू लोग इतने हैं ऐसे भाव मानते, बहुत से तो बेवकूफ है, कुछ शास्त्र जानते नहीं, इसलिए वो लोग हमारी बात को राम के नाम पर सब कुछ को मानने के लिए तैयार है। इसलिए उसने एक ग्रंथ लिखा रामायण, और उसका नाम रखा कृतिवासी रामायण, जैसे वाल्मीकि
रामायण,
कृतिवासी बंगला पद्य है। और उसमें राम के द्वारा रावण को वध करने के लिए दुर्गा की पूजा कराई। कैसे पूजा कराई उसमें कहानी लिखा। रामचंद्र जी उनको मारना चाहते थे किंतु मार नहीं सके, तो उन्होंने दुर्गा जी की पूजा की। 100 कमल उन्होंने मंगाया, 108
नील कमल,
और कमल लेकर के और एक एक मंत्र से दुर्गा जी की पूजा करने लगे। जब 107 कमल हो चुका तो 8वां कमल छिपा दिया दुर्गा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब छिपा दिया तो देखा कि 107 ही है, 108 तो हुआ नहीं, 108 करना चाहिए, शुभ संख्या है, क्योंकि 108 जो है सबसे बड़ी संख्या है। कैसे? 9, 8 और 1, 9, 9 के बाद में फिर 1 आ जाता है, 80 के बाद में फिर और ले जाओ 90 हुआ, फिर 1 आ जाता है।
यहाँ से पलट पलट
जहाँ भी लाख तक गिनती करो, 9 के बाद ही 1 आ जाएगा। इसलिए 8, 1, 9 ये सबसे बड़ी संख्या है, मैं इस बड़ी से बड़ी संख्या में उनकी उपासना करूंगा। इसलिए 108 से पूजा करने लगे, किंतु एक चोरी चली गई, दुर्गा जी ने चोरी कर लिया उनकी परीक्षा करने के लिए। राम जी ने देखा कि अब कमल तो है नहीं,
वो नास्तिक
है, सब उन्होंने क्या किया देखा कि हमको तो सभी लोग कमल नयन कहते हैं, हमारे नेत्र कमल कैसे माने, बस अपने तीर धनुष से उन्होंने अपनी आंख निकाल ली और
आग निकालने गए तो देवी पकड़ ली।
आंख निकालने के लिए गई, लगा दिया और रक्त जब गिरने लग गया, पुत्र पुत्र मत करो ऐसा, मैं संतुष्ट हो गई। और उन्होंने वरदान दिया, अब तुम रावण को मार सकते हो। तब सब हिंदू लोग उसको पढ़ने लगे और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तो राम की तो मैया और उपास्या देवी तो दुर्गा जी हैं। और तब से 250 वर्षों के बाद से बंगाल में आरंभ हुआ और बंगाल से सारे भारत वर्ष में और जहां जहां बंगाली है वहां पर
आरंभ।
उन्होंने इसका नाम ही पूजा रख दिया है, दुर्गा पूजा भी निश्चित पूजा थी,
नौ दुर्गा का पूजा उन्होंने कर दिया। कहा रामचंद्र जी का इस समय, और जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय भी नवरात्रि होती, उसने भी ऐसे ही कर दिया, दुर्गा जी का पूजा चला दिया उसके देवी। इसलिए भोले भाली बंगाली लोग पहले, और इसके बाद में भोले वाले भारतवासी सभी लोग, आज विश्व में जहाँ जहाँ बंगाली है,
वृंदावन में देखो महाराज,
वृंदावन में भी मतलब जहाँ बंगाली होंगे वो जब
बंगाली
रहकर हिंदू हिंदू करे ना,
नहीं बंगाली लोग चार दिन करते हैं, ये नवरात्र उपवास सब नहीं करते हैं,
उपवास नहीं करते, खूब खाते
हैं, तो बंगाली लोग करते हैं, बंगाली से
मैं महाप्रभु का सेवक हूँ, बंगाली नहीं हूँ।
तो वो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और उनकी देखा देखी भारत वर्ष में चारों तरफ में वो लोग सब करने लगे।
9 दिन भी वही उन्होंने शुरू किया था,
तो क्या इसके बाद धीरे 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 ये बढ़ते गया।
9 देवी 9 देवी
पहले ये 9 दिन की पूजा राम की होती थी, सीता जी की, राम जी की। अब उन्होंने धीरे धीरे, जैसे मथुरा में पहले यहाँ पर कृष्ण नाम का हरि कीर्तन होता था और रात में जागरण होता था एकादशी के दिन, आजकल देवी का जागरण होने
काली मैया का,
ये जहाँ से पंजाबी लोग आए, जहाँ जहाँ गए पंजाबी लोग,
उन्होंने कहा पूजा नॉर्थ में पंजाबियों ने चलाई है,
ये देवी जी की पूजा उन्होंने बंगाली और इधर में पंजाबी लोग, ये दुर्गा के पूजा के दिन
रात्रि
जागरण और दुर्गा का कीर्तन। जो को ये आशुविक विचार, इसलिए आज के दिन राम जिसे हम लोग प्रार्थना करेंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों को सुबुद्धि दे करके भगवान की पूजा में उनके चित्त को लगा।
तो महाराज आजकल वेरी वेरी मैन लॉन्ग टॉपिक in this small lecture, he is telling that Durga Devi is in fact wife of Shankar, in continuation of that part which we have just discussed before. She is wife of Shankar and both are very staunch devotee of Lord Krishna. They are not Mayavadi at all. So duty of Durga is to punish those who are Mayavadi and demonic. And Durga Devi is in fact having the designation of controlling this good allotted by Krishna to herself. So what she is doing, she is killing all the demons. Who are the demons? Demons who are monoistic, Advaitavadi, Mayavadi, and those who are voidist, bodhist. She killed all those demons. There was a demon, its name was Mahishasur. Mahishasur was very powerful demon. He got benediction from Shiva that I will not be killed by you. I will not be killed by any person created in the creation of Brahma. I will not be killed by any man. He took so many benedictions. And though he was a demon, but he was living in a form of he buffalo. What do you call?
Buffalo.
And Assami buffalo, Maharaj is saying, in Assam, very dangerous and very
a furious type of buffalo is there. So he was in that shape and he was disturbing so much. At that time she was said that I cannot kill him. He instructed Durga Devi that you should kill him, and she killed him. She killed him sometime else, but not during these days. So the important point is that she kills such type of demons. In fact, she is shadow potency of Radharani. Durga is shadow potency of Chaya Shakti of Radharani. And we are not against her because she is shadow potency of Radharani. We go our head to her. But our east, to whom we worship, is Radharani. When we worship Radharani, Durga is worshipping automatically comes in it. We don't need to worship her separately. But somehow or other, if we reach a place where her deity is there, like Chaitanya Mahaprabhu, when he went to south, he went to Meenakshi temple, Kanyakumari temple, and he chanted Hare Krishna mantra before her. We can say to her, say Hare Krishna, she will be pleased listening her Krishna's kirtan before her. Then Maharaj says, today is another most important auspicious date is that it is appearance day of Madhvacharya. Maharaj is saying, Madhvacharya is in fact said to be partially incarnation of Bhim and Hanuman. Hanuman in the time of Treta when Ram was there, he came to serve Ram. In fact, he is a sort of incarnation or expansion of Shankarji. And same in case of Krishna, past time he came as Bhima. And now in Kali Yuga, he came as Madhvacharya. Madhvacharya was very much potent. He totally defeated and entered and rejected Mayavad very powerfully. Maharaj was saying that he so powerfully defeated Mayavad, even Ramanujacharya did not do so much. He professed that Jeev and Brahm, they are two different entities. They are not same. And Jagat is not false. This world is not false. It exists. It is truth. Maharaj is quoting one shloka when he says, Idam means this. When this is Brahm and Brahm is truth, then how this world is false? When in the shloka it is said that Jag is Brahm and Idam world is Jun and Brahm is truth, so this world is also truth. Some people say, Maharaj is establishing here Siddhant, I think if we can get it, it will be very much beneficial point, beneficial things for us. Some people say that we don't belong to Madhva Parampara. Maharaj is saying, Gaudiya Vaishnava Parampara, Gaudiya Vaishnava do not belong to Madhva Parampara. Maharaj is saying that he is writing life history of his Guru Maharaj. Though it is a very brief description, but Maharaj has taken all these siddhants and principles which Param Guruji has explained so nicely that they will be limelight for us to keep and sustain our parampara, otherwise we will be lost. So, in order to establish, he said that Madhvacharya established, what is established? That moksh, Maharaj was explaining according to Madhvacharya, Krishna Prem, love for Lord is our purpose of devotion. He also professed the word moksh, but according to Madhvacharya, moksh is service to lotus feet of Vishnu.
Not as
Advaitwadi says, merging in Brahma. According to Madhvacharya, moksh means service to lotus feet of Vishnu. What is Mukti? Maharaj is establishing Mukti means to get liberated. So Maharaj is explaining the word getting liberated from this material existence and situating ourselves in our real form and serving Lord is called Mukti. So this was established by Madhvacharya. In Madhvacharya, there are eight important mutts in Udipi. And all those important mutts, they have two sannyasis. They are called the head of those mutts. And those sannyasis worship in the mood of Gopika. In the footprints of Gopis, they are worshipping. Maharaj is saying, because of these reasons, Chaitanya Mahaprabhu and our Gaudiya Parampara, they accepted Madhva Parampara, because in Madhvacharya Parampara, there is clear distinction between Jeev and Brahm. It says, this philosophy says that Jeev and Brahm is different. And also, there is, Madhvacharya was devotee of Nartan Gopi.